शिव बाबा पधारे ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमा की चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ विश्व में थी पाप की जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ
ओम शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने हम सबको फिर से याद दिलाया है कि हम सब कहाँ बैठे हैं। शिव बाबा रूहानी सर्जन है, हम सब इस रूहानी हॉस्पिटल में बैठे हैं। 63 जन्मों की रोगी है आत्मा, इतना कड़ा रोग दे अभिमान का लगा हुआ है आत्मा पर, जिससे अनेक बीमारियां आत्मा में आ गई है, विकारों की विकृतियां आ गई है। परंतु बाबा रूहानी सर्जन हमें क्या कहते हैं, इन सब बीमारियों की एक ही दवा है। कौन सी है दवा? एक ही दवा है ना? 100 बीमारियों की एक ही दवा कहते हैं ना कई बार, तो वो एक ही दवा कौन सी है जो आत्मा के सभी रोगों को खत्म कर सकती है? कौन सी है वो दवा? मन मना भाव, बाबा की याद। लेकिन बाबा की याद रूपी दवाई तब असर करेगी जब पहले आत्म अभिमानी बनेंगे, क्योंकि जड़ ही वो है सारी बीमारियों की देह अभिमान। तो जब तक आत्म अभिमानी नहीं बने हैं तब तक ये रोग जाएंगे नहीं। तो आत्म अभिमानी माना निराकारी स्थिति, निराकार हूं मैं आत्मा। और निराकार आत्मा निराकार को याद करे तब ये रोग जाएंगे। अब तक तो अपने आप को साकार ही समझते थे और साकार को ही याद करते थे, तो साकार तो मोटा रूप है, और उस मोटे रूप को याद करते थे, अपने आप को भी देह समझते थे, तो उस मोटे रूप से अपने आप को समझते थे और मोटे रूप से याद करते थे साकार को, तो ये रोग गए नहीं। परंतु जब सूक्ष्म बन जाएंगे, निराकार बन जाएंगे और निराकार को याद करेंगे तब ये रोग जाएंगे। तो आज बाबा ने विशेष स्पष्ट किया है कि साकारी याद से हमारे विकर्म विनाश नहीं हुए और ये विकर्म बनते गए। इसलिए भक्ति मार्ग में भी विकर्म बनते ही गए, क्योंकि देह अभिमान तो गया नहीं। तो आज बाबा ने विशेष रूप से ध्यान खींचवाया, निराकारी आत्मा हूं ये निश्चय कर और निराकार बाप को याद करना, यही एक तरीका, एकमात्र तरीका है आत्मा को शुद्ध करने का, सब रोगों का निवारण करने का। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य, और फिर जब रोग निवारण हो जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए तुम एवर हेल्दी बन जाते हो। फिर बाबा कहते स्कूल भी है, पढ़ाई है, ज्ञान की सब्जेक्ट्स है बहुत, तो ज्ञान को भी जितना धारण करते जाएंगे उतना पद ऊंचा होता जाएगा। इसलिए स्कूल में, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट बन करके पढ़ना है। पढ़ाई कितनी कर रहे हैं वो टीचर को पता चलता है, बाबा को पता चलता है, माता पिता को भी पता चलता है। इसीलिए कोई ये न समझा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मियाँ मिठू भी नहीं बनना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो उसकी धारणा भी होगी, नहीं तो खाली पढ़ लिया ऐसे क्या होगा, धारणा तो हुई नहीं तो परीक्षा में फेल हो गए। तो आज बाबा ने उस पर भी ध्यान खिंचवाया। सुनते बाबा की माँ वाक्य, आज 17/4/2025 है। मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो, बहुत पहला फरमान यही है, देही अभिमानी होकर बैठो। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? बाबा याद पर जोर देते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं, फिर कहते हैं फुर्सत नहीं, हाँ तो बहुत बहाने बनाते हैं। तो बाबा उसकी उसका इलाज बताते हैं, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए। उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो, एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है ये कोई नहीं कह सकता है, निराकारी आत्मा समझ निराकारी बाप को याद करने के लिए। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो, बाबा उसकी युक्तियां तो बताते ना, करावनहार बाबा मैं आत्मा करनहार, ये समझो मैं आत्मा करावनहार ये इंद्रियां करनहार। तो ये देही अभिमानी स्थिति में रहकर हम हर कर्म कर सकते हैं, तो बाबा की याद भी रह सकती है। बाबा कंबाइंड रूप है, मेरे साथ साथ है, तो कंबाइंड रूप में साथी रूप में तो बाबा की याद क्यों नहीं रह सकती हर कर्म करते भी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो, कोई बहाना नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद फिर बच्चों को क्या कहा जाता है, पहले गुड मॉर्निंग करते हैं बाबा, फिर क्या कहा जाता है कि बाप को याद करो। हाँ मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करते हैं ना, तो फिर प्रेयर्स करते हैं, भगवान को याद करते हैं, फिर पढ़ाई शुरू होती है। तो बाप को याद करो, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है, फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है, वो एक है, सर्वव्यापी हुआ तो फिर तो अनेक हो गया ना, सर्वव्यापी नहीं माना जाता है क्योंकि वो बाप है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो, कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। ये तो बिल्कुल सहज है ना, मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं, ये भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे, बाबा उसकी बहुत युक्ति बताते कैसे मुझे याद करो, और ये भी बताते कि इसी में ही फायदा है तुम्हारा, क्योंकि बाबा कहते याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। तो मुख्य बात ही ये है, धंधे आदि की कोई मना नहीं है, वो सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये तो समझते हैं ना, क्या समझते हैं क्यों याद जरूरी है, क्योंकि ये तो समझते हैं ना हम पतित है, सब आत्मा इस समय पतित है, कोई भी पावन नहीं है, हम पतित है। साधु संत ऋषि मुनि आदि भी सब साधना करते हैं, साधु किसको कहेंगे जो साधना करता है, और साधना करने वाला तो वो संपूर्ण थोड़ी हुआ, संपूर्ण हो गए तो साधना करने की जरूरत ही नहीं। तो साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं, साधना क्यों की जाती है, भगवान से मिलने के लिए, यही तो साधना करते हैं। अब भगवान मिल गए तो फिर अब उस प्रकार से साधना तो नहीं करेंगे, भगवान की याद में लीन हो जाएंगे, समा जाएंगे, उनकी याद की मस्ती में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं साधना की जाती है भगवान से मिलने के लिए, सो जब तक उनका परिचय न हो तब तक तो मिल नहीं सकते। अब मिल परिचय हो तब उनसे मिले, तब उनकी याद में मग्न हो जाएंगे। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है, साधु संत महात्मा सब इसमें आ गए, किसी को भी बाप का सही परिचय नहीं है, देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय तो झट हो जाता है। किसी का परिचय देते हैं ना, इतना लंबा चौड़ा परिचय देते हैं आप, तो झट परिचय हो जाता है। पर परमात्मा का परिचय बाबा तो कहते हैं वो तो सबसे शॉर्टेस्ट परिचय। बाबा तो कई बार कहते हैं एक मिनट में शिव बाबा का परिचय दो, फटाफट हो जाता है। मनुष्य का परिचय देते इतना लंबा चौड़ा। तो बाबा कहते हैं बड़ी चीज का परिचय तो झट हो जाता है, आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठना है। ये भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की हॉस्पिटल। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती, आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं सब अविनाशी है, ऐसे नहीं थोड़ी आत्माएं विनाशी भी है, नहीं सब आत्माएं अविनाशी है। इतनी सब आत्माएं सब अविनाशी है, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है, हमारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है क्या कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ये बैठा हुआ है बुद्धि में। हम 84 जन्म लेते हैं, हम अविनाशी आत्मा है, हम 84 जन्म लेते हैं और ये ड्रामा है, इस ड्रामा में हम पार्ट बजा रहे हैं। अब इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब कब आते हैं, कितने जन्म लेते हैं, ये भी तुम जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे ना, सब धर्मों के तो 84 जन्म होंगे नहीं। जो शुरू में आएंगे ड्रामा में उनके 84 जन्म होंगे, जो बाद में आएंगे उनके तो नहीं होंगे 84 जन्म। तो जरूर किसी एक धर्म के होंगे 84 जन्म, सभी के तो हो न सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं है, सब अपने अपने समय पर आते हैं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकाले। अब कहीं कोई कहे कि क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं कितने जन्म लेती है, फलाने धर्म की आत्माएं कितने जन्म लेती। बाबा कहते तुम्हारा क्या जाता है इनमें, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसके बारे में सोचो। हम आत्माएं उस धर्म की है तो हम कितने जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकाले। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, बस इतना जानते हैं। उसकी फिर वृद्धि होती है, सब सतो प्रधान से तमो प्रधान होने ही है। अविषम भावी कोई भी आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई, जन्म लेती गई, सतो प्रधान से तमो प्रधान होती गई। ये हो नहीं सकता कि सतो प्रधान ही रहे, नहीं, सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे, और कोई धर्म नहीं होगा वहाँ। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है, ध्यान देंगे, जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वो जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। अगर मर्तबा ऊंचा लेने का कोई लक्ष्य ही नहीं है तो याद भी नहीं करेंगे। तो जिनको ऊंच मर्तबा लेने का लक्ष्य है वो जरूर जास्ती याद में रहेंगे। और समाचार भी लिखते हैं बाबा को, जब याद में जास्ती रहते हैं अपना पोता मेल बाबा को देते हैं, लिखते हैं बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते भी नहीं है, क्योंकि याद में रहते नहीं है तो बाबा को क्या समाचार देंगे, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे। परंतु मालूम तो पड़ता ही है ना, क्योंकि वो आत्मा याद में नहीं रहती है, झरमोई जग में इसकी बात उसकी बात, सारा दिन पर चिंतन में लगी रहती है ना, तो फिर क्या क्या कहेंगे उनके लिए, तो माना पता चलता है ये बाबा की याद में नहीं है। तो स्कूल में समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, पर तो मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, टीचर भी सावधान करती है, माता पिता भी सावधान करते हैं, तुम पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं, हाँ ये पढ़ता नहीं है तो कहीं फेल न हो जाए। तो लौकिक माता पिता भी बच्चे की पढ़ाई से ये समझ सकते हैं, तो ये भी बड़ा स्कूल है। शिव बाबा हमारे माता पिता भी है तो टीचर भी है, बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ तो नंबर वार बिठाया नहीं जाता है, नंबर वार नहीं बिठा सकते हैं, तो बुद्धि से समझा जाता है, नंबर वार तो होते ही है। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, अभी और पॉइंट। तो उस समय हमारी जो दादियां थी, बाबा उनको कभी भी एक जगह पर नहीं रखते थे, बच्ची अभी यहाँ जाओ, यहाँ जाके सेवा करो, फिर बाबा उनको कहते थे अभी यहाँ जाओ, कोई नया सेंटर पर जा भेजते थे, फिर उसको जमाओ, फिर वो जम गया सेंटर, कोई किसी और को मुकरर करके फिर बाबा उनको कहते दूसरे स्थान पर जाओ, तो ऐसे बाबा भेजते थे। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वो फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं। अब वो टीचर तो बहुत अच्छी थी और सब स्टूडेंट्स उससे बहुत खुश थे, उसने अच्छी तरह सेंटर को जमाया, अपने पांव पर भी खड़ा हो गया। फिर बाबा उसको कहते थे बच्ची अब तुमको वहां जाना है, तो वो स्टूडेंट्स कहते थे हमारी इतनी अच्छी टीचर, हमारी टीचर क्यों बाबा आपने भेज दी, तो बाबा कहते हैं वो फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको तो महारथी चाहिए, हमारी टीचर तो बहुत अच्छी थी, अभी और दूसरी जो टीचर आई होगी वो इतनी अच्छी नहीं भी होगी, इतनी होशियार नहीं भी होगी, तो वे हमको तो वही चाहिए, हमको महारथी चाहिए। तो जरूर समझते हैं, अगर वो कहते हैं डिमांड करते हैं और अच्छी टीचर की, तो समझते हैं कि हमसे होशियार नामी ग्रामी है ये, तो हम नहीं चला सकते हैं सेंटर, इसीलिए हम कहते हैं क्यों उनको भेजा। नंबर वार तो होते ही है ना, प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने लिए, समझाने वाले भी सब नंबर वार है। तो दादियों को बाबा खड़ा करते थे, दादियां देखती थी हाँ ये कैसे समझाता है, ये कैसे समझाता है, कैसे समझाता है, फिर अगर ठीक नहीं समझाता था तो दादी बुलाती थी देखो तुमने ऐसे ठीक नहीं समझाया, तो ये तो सब बड़े करते थे। तो प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने लिए, रिसीव करने वाले तो जानते हैं ये किस प्रकार का आदमी है। अब जो रिसीव करते हैं तो कोई ऐसे विशेष आत्मा को खड़ा करते थे, और अगर वो व्यक्ति नामी ग्रामी है तो फिर कौन सा गाइड उनको देना है वो भी फिर समझते थे, फिर उनको बुलाते थे कि तुम इनको समझाओ। तो बाबा कहते रिसीव करने वाले तो जानते हैं ये किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सब है, समझाने वालों में भी ग्रेड्स हैं, वहां तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातरी तो सब करते ही है, हाँ उनको फिर कोई महारथी समझाते, कोई बड़ा आदमी ऐसे आता है तो ऐसे नहीं छोटे व्यक्ति कोई भेज देंगे, तो उनको फिर महारथी समझाएंगे। तो अब कहते ये भी एक खातरी करना है उस बड़े आदमी की, कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातरी तो सब करते ही है, ये कायदा है। तो बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, ये भी सबसे बड़ी खातरी है, सबसे बड़ी खातरी बाबा अपने बच्चों की महिमा करते हैं कि देखो ये कितनी सर्विसेबल है, ये कितनी मीठी है। हाँ दादी जी भी करती थी, बहुत महिमा करती थी, ये भी सबसे बड़ी खातरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातरी की जाती है, ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, ये भी खातरी है ना, उनकी महिमा करते हैं, किसी की भी महिमा गाते हैं तो कहेंगे भाई ये भी खातरी करना है, ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, ये भी खातरी है ना, वहाँ ले आते हैं ना, बहने ले आती है, स्टूडेंट्स को लाती है, फिर वो उनका परिचय देती है और कहती है कि बहन जी ये जो स्टूडेंट है इसने बाबा का घर बनवाया है, बाबा का सेंटर बनाया है, बाबा के लिए जमीन दी है, तो ये भी एक खातरी हो गई उस आत्मा की। तो बाबा कहते हैं ये भी खातरी है ना, अब तुम ये जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंच से ऊंच है। हाँ गाते ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान, ये ग्रंथ में आता है। तो गाते भी हैं बरोबर ऊंचे से ऊंचा है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है। अब ऊंचे से ऊंचा भी कहते हैं, फिर उनको उससे पूछते हैं उनके बारे में और बताओ, बस सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते। सर्वव्यापी कहना माना एकदम नीचे कर देना। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वो है मूल वतन वासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य, साकार वतन में मनुष्य रहते हैं, सूक्ष्म वतन में देवताएं रहती है रहते हैं, और फिर मूल वतन में भगवान रहते हैं, आत्माएं भी रहती है, यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंच से ऊंच भगवान वो निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए। एक तो हम ही कौड़ी मिसल बन गए हैं, फिर सर्वव्यापी कह करके भगवान के बारे में तो उनको हमारे से भी अपने से भी बदतर कर दिया, तो जास्ती नीचे ले गए हैं, अपने से भी पहचानते ही नहीं हैं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। हाँ फिर पहचान कम हो जाती है, संगम पर हमें पहचान मिलती है, फिर भूल जाते हैं, देवता बन गए फिर भूल गए, फिर द्वापर युग से तो ढूंढते रहते हैं, पहचान तो होती नहीं, पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी, ढेरों को मिलेगी बाप की पहचान। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही ये त्रिमूर्ति गोला और झाड़, ये दो चित्र बाबा के प्रसिद्ध चित्र है, ये शुरू से ही बने हैं, गोला त्रिमूर्ति और गोला एक चित्र में और झाड़ दूसरे चित्र में। इनमें कितनी रोशनी है, कितना ज्ञान है, रोशनी है, ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सत्यों के मालिक थे। अच्छा सत्यों के आगे क्या था, सत्यों से पहले क्या था, ये भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। सत्युग में लक्ष्मी नारायण थे तो उसके पहले क्या था, कलयुग था, तो कलयुग में क्या है, प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है, सत्युग में एकदम राजाई फट से, और कलयुग में तो प्रजा का प्रजा पर राज्य राजाई नहीं। सत्युग के आदि में राजाई थे और अभी कलयुग में भी राजाई है, अभी है ना कई ऐसे देश है जहाँ पर उनको राजा मानते हैं, अभी कलयुग में भी राजाई है, भल कोई वो पावन नहीं है परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं, बापुर कलयुग में और फिर खास करके अंग्रेजों के राज्य में तो बहुत धनवान होते थे, वो अंग्रेजों को पैसा देते थे और उनको अंग्रेज लकब देते थे, महाराजा का लकब। तो वही बाबा कहते हैं भल कोई वो पावन नहीं है परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं, महाराजा तो कोई है नहीं टाइटल खरीद कर लेते हैं, जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर का, बीकानेर का महाराजा, वो राजा थे सब लेकिन वो अंग्रेजों को पैसा दिया और उनको महाराजा का टाइटल मिल जाता था। तो पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना, ये नाम अविनाशी चला आता है, महाराजा ये टाइटल ये अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी है अपवित्र राजा, महाराजा अक्षर चला आता है, अभी भी थाईलैंड में आप जाएंगे वहां पर भी जो राजा, भले सरकार तो डेमोक्रेसी लेकिन राजा है वहां, उसको भी राजा ही कहते हैं, तो बहुत उसका मान है। तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे, किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। तो बाप कहते हैं हाँ, राजाई की स्थापना कैसे होती है, देखो पहले पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके हाँ फिर राजा रानी बन जाते, महाराजा महारानी बन जाते स्वर्ग के। तो बाप कहते मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए, वो तो पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनते हैं, और तुम वो पढ़ाई पढ़ करके इस जन्म में कोई बैरिस्टर बने, वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। तो सब कौन है, हम सभी होवनहार महाराजा महारानी है ना, तो तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी है पुरानी दुनिया, भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल है, इस कलयुगी दुनिया में कई ऐसे मकान बड़े सुंदर सुंदर है, बहुत अच्छे महल है, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई भी ताकत ही नहीं है। अभी कोई अपना बड़ा मकान बनाए और उसमें दीवारों पर हीरे जड़ बनाए ये तो अभी किसी में ताकत नहीं है। परंतु मेरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत ही नहीं है। सतयुग में ये सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, एक दो वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। अर्थक्वेक हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया, और फिर सरकार क्या करती है कि एक दो वर्ष में पूरा और ही सुंदर शहर खड़ा कर देती है, एक दो वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर में भी फर्क रहता है ना, वहाँ तो बहुत कारीगर फुर्त होंगे ना, और अभी तो कलयुग में कारीगर आएंगे कुछ काम करेंगे, आधा घंटा काम करेंगे फिर 1 घंटा छुट्टी, बातें करते रहेंगे, मोबाइल देखते ना कहीं का, और या तो चाय पीते रहेंगे, अभी सभी आते हैं परंतु वहाँ तो कितने फुर्त होंगे, फटाफट सब कर लेते होंगे। तो बाबा कहते हैं परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर में तो फर्क रहता है ना, आजकल तो नई नई इन्वेंशंस भी निकलती रहती है, मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, बनी बनाई ईंटें, बनी बनाई सारा बहुत कुछ लाते हैं, अब फट फट से बस जोड़ देते हैं, मकान बन गया। तो बाबा कहते हैं नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं, मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, हाँ झट वो मकान तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो ये सब वहाँ काम में तो आते हैं ना, वो इंजीनियर्स जो है वो यहाँ का वो हुनर ले जाते हैं और वहाँ वो सब काम में आता है, ये सब साथ चलने हैं, ये संस्कार सब साथ चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं ना, ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे तुम्हें पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं, बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है, 84 जन्म लिए, एक एक सीढ़ी उतरते गए, अभी एक ही जन्म में बाबा कहते हैं चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत भी मिलेगी, हाँ खुशी भी होगी और ताकत भी मिलेगी जितना बाप को याद करते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है परंतु याद में बिल्कुल नहीं रहते हैं। भल ज्ञान में तीखे हैं परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, ये भी नंबर वन में है तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। ब्रह्मा बाबा नंबर वन में है तो जरूर नंबर वन में ऐसे थोड़ी नहीं गया, ऐसे तो नहीं गया ना, मेहनत करते होंगे। तुम हमेशा समझो, अभी ब्रह्मा बाबा भी मूली चलाते, शिव बाबा तो चलाते ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा शिव बाबा की तरफ। ये भी तो सीखता होगा ना, ब्रह्मा बाबा भी सीखता होगा ना। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो, हाँ ये भी सिखा सकता है परंतु फिर भी याद हमको शिव बाबा को करना है। फिर भी कहते बाबा को याद करो, ये भी कहते बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र हैं। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, तो चित्र समझाते समय भगवान का परिचय दो। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, वो आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं। अभी इस शरीर में विराजमान है वो बाप, सभी अकाल मूर्त है, सब आत्माएं अकाल मूर्त है। ये अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है, ये भ्रकुटी अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, ऐसे नहीं कि सोने का यहाँ तख्त होगा या आत्मा विराजमान है तो या कोई ऐसा विशेष होगा, ये तो बस यहाँ विराजमान है। तो बाबा कहते अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, ये तख्त है अकाल मूर्त का, आत्मा अकाल मूर्त और ये भ्रकुटी तख्त है अकाल मूर्त का। भ्रकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का, आत्मा अकाल मूर्त अकाल तख्त पर बैठी है। आत्मा ही सब अकाल है, आत्मा को तो काल खा नहीं सकता है, आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा ही सब अकाल है। कितनी अति सूक्ष्म है, बाप तो है निराकार, वो अपना तख्त कहाँ से लाए? उसको अपना तख्त तो है ही नहीं, शिव बाबा को अपना शरीर ही नहीं है तो तख्त भी अपना नहीं है, तो बाप भी तो वो बाप तख्त कहाँ से लाए? तो बाप कहते हैं मेरा भी ये तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का ये तख्त है, भ्रकुटी भ्रकुटी सब आत्माओं का तख्त है। मनुष्यों की ही तो बात की जाती है, जानवरों की तो बात ही नहीं है, उनका भी तो तख्त होगा, आत्मा उनमें भी है, लेकिन बाबा उनकी चर्चा नहीं करते, मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए वो तो सुधरे, क्योंकि लोग प्रश्न करते रहते हैं जानवरों का क्या होगा, उनका उद्धार कैसे होगा, क्या उनके भी 84 जन्म होते हैं, कई पूछते रहते। तो बाबा कहते उनके बारे में तुम क्यों पूछते हो, तुम्हारा क्या जाता है, उनका अपना हिसाब किताब है, बाबा को जरूरत नहीं है सब कुछ बताने की। पहले मनुष्य तो सुधरे, मनुष्य सुधर गए तो ये जानवर पक्षी सब सुधर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पहले तो जो मनुष्य जानवर से ही बदतर हो गए हैं वो तो सुधरे, बेचारे वो तो मूक प्राणी है तो उनको सुधारने की तो बात ही नहीं, लेकिन कितने होशियार हो जाते हैं कुत्ते, देखो ट्रेंड हो जाते हैं, क्या होशियार हो जाते हैं, मनुष्य से भी ज्यादा होशियार। वो तो सुधरे, तो कोई जानवर की बात पूछे, अगर कोई जानवर की बात पूछे तो उनको क्या बोलो, उनको वो बोलो पहले अपना तो सुधार करो। हमने तो एक व्यक्ति से, उसने कहा जान बहुत बहुत बहस किया मेरे साथ, मैंने कहा अच्छा आप इतना बहस कर रहे हो, आपको जानवर बनना है क्या? कहता नहीं 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 नहीं, अब जानवर बनना नहीं है तो जानवरों के बारे में तुम क्यों ऐसे सोचते हो, तुम पहले अपने आप को तो सुधारो। तो बाबा कहते हैं बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, कीचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा, अभी तो कितना किचड़ा करते हैं ना आते हैं, तो किंग के महल में, राजा के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, वो जो उनके दास दासियों में उनको दंड डाल दे कि कैसे इसने किचड़ा किया कबूतर ने, जरा भी किचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके, बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है, बहुत सफाई रहती है। हाँ, लक्ष्मी नारायण का मंदिर जहाँ भी जाओ देखो, बड़े सुंदर सुंदर बिरला मंदिर, बिरला वाले जो बनाते हैं, कितना सुंदर मंदिर होते हैं, तो बड़ी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, अक्सर करके देखा गया है मंदिरों में कबूतर जरूर होते हैं, बहुत होते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे कबूतर हो तो। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है, अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते हैं। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, हाँ क्या समझाते बाबा बच्चों को प्यार से, बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो, मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बहुत बड़ी श्रीमत है, इस मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है, आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम ये है। अच्छा, आत्मा ही किसके बच्चे ना, मैं फलाना हूँ फलाना हूँ, पर आत्मा किसके बच्चे हैं, एक परमात्मा के, तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा, वो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब वो बाप है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, फिर वो वर्षा देता है तो वर्षा देता है तो एक ही होगा ना, सर्वव्यापी होगा तो वर्षा कौन देगा। तो बाबा कहते तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे ये तो सब झूठे चित्र हैं, 10 भुजाओं वाला हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या, माने ऐसा कोई व्यक्ति होता है क्या, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में बाबा कहते भक्ति मार्ग की सामग्री है तो वास्तव में चाहिए एक शिव बाबा की, वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की जो सबका सदगति दाता है। तो तुम्हारी बुद्धि में है ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंच से ऊंच बाप ही आकर सबकी सबको सदगति देते हैं, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं, बाप से बड़ा तो कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबर वार धारणा धारण कर सकते हैं, धारणा नहीं कर सकते हैं तो बाकी क्या काम के रहे। अब कोई कहे मुझे ये धारण नहीं होती, मैं याद नहीं कर सकता हूँ, बाबा कहते फिर क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले, अब ज्ञान तो लिया, अब दूसरों को ज्ञान सुना रहा है, लेकिन अंधों की लाठी बनने के बदले खुद भी अंधे बन जाते हैं, संघ के रंग में आ जाते हैं, खुद भी अंधे बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देते हैं उसे पिंजरपुर में रखते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुम सब गैया हो, ज्ञान दूध सबको पिलाओ, नहीं तो क्या काम के। फिर उनको तो पिंजरपुर में रख देते हैं, गऊओं को भी जो दूध नहीं पिला सकती, गऊ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं, तो ये भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत है जो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, समझते ही नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है, बस जो कुछ मिला सो अच्छा यही समझते हैं। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है, अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंच है और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है, उनको बुलाते ही पति दुनिया में है, भगवान को पावन दुनिया में तो बुलाते ही नहीं है। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो फिर राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ ही नहीं करते वो गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं कर सकते हैं। तदबीर नहीं करते तो तकदीर में भी नहीं होगा, और इसका रिवर्स भी है, तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं कर सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हाँ, अच्छी तकदीर कैसे बनाते? अच्छी तदबीर से। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रूप बसंत वन मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। रूप बसंत वन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर यानी कटु वचन नहीं निकालने हैं। दूसरा, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान, त्रिस्मृति, तीन स्मृतियां बाबा देते हैं। त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव है ना, कई तीन तिलक लगाते मना, एक वो यू शेप फिर बीच में भी लगाते हैं, तो ऐसे त्रि तिलक हो गया। तो त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। तो कौन सी है त्रिस्मृति? स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन्हीं तीन स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। तीन स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है, आत्मा, बाबा और ड्रामा। नॉलेज के वृक्ष की ये तीन स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा दो पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है, ऐसे मुख्य है बीज बाप, फिर बाप की स्मृति, फिर दो पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा। बीज से दो पत्ते निकलते हैं, तो आत्मा और ड्रामा, और बीज है बाप। तो बाबा कहते हैं बीज बाप की स्मृति, फिर दो पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन तीन स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। जो इन तीन स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। तो संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते हैं। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं बाप तो है ही मेरा, साथ है ही, ऐसे नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। तो यह माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो, तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज सद्गुरुवार है, अभी भोग लगेगा, लेकिन भट्टी में आए हुए भाई बहनों को कल प्रोग्राम नहीं सुना पाए थे तो आज दिन भर का प्रोग्राम बता देते।